30,000 feet पर आ जाए।
याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता
बेहतर का प्रात निकला तीन नंबर के रजिस्टर में 300 रुपए राशि के रिकॉर्ड है छोड़ विदे आकाश इस धरती पर आ गया।
याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा कि फिर से आओ आकाश की नाम छोड़ आपने जो सिंहासन रखा है क्या नीचे स्टेज से कहाँ आओ कहाँ आओ साकार शक्ति पर नीचे स्टेज में आ जाओ। और अभी बाप दादा क्या कह रहे हैं दादा कह रहे हैं तुम अपने व्यक्त स्टेज साकारी स्टेज को छोड़ करके आकारी ऊंचे स्टेज में आ जाओ। और बच्चे अभी तक क्या गीत गाते हैं छोड़ भी दे आकाश अरे छोड़ इस सच्ची पर आ जा रहे फिर से आओ क्या क्या कहते हैं फिर से आओ पहले आए थे और अब फिर से आओ अभी पेट नहीं भरा क्योंकि माया की परछाई बढ़ गई क्यों कहते हैं फिर से आओ ये क्यों कहते हैं क्योंकि क्योंकि माया का परछावा पड़ गया है इसलिए भगवान को भी कहते हैं कि तू नीची स्टेज में शक्ति पर आ जाओ। अथवा यूं कहें रावण राज्यों पर अगर रावण राज्य होता नीचे आ जाओ राम राज्य में तो सब नीचे स्टेज में ही होते हैं आत्म की स्थिति में ही होते हैं देवान तो किसी को होता ही नहीं अभी रावण राज्य में सभी दुखी ही दुखी हो पड़े कहते भी हम भ्रष्टाचारी पति थे तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ हर युग में नहीं आता हूँ हर समय नहीं आता हूँ मैं सिर्फ कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ 5,000 वर्ष पहले आया था और अब फिर से आया हुआ हूँ अब फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ पाप आकर के आफत देते धैर्य देते बच्चे तुम बेफिक्र रहो ये तो मेरा पार्ट है क्या तुम बेफिक्र रहो कि न हो कि नीचे आ जा देहाभिमान में आ जा कौन कौन भगवान भी कभी देहाभिमान में आता है क्या फिर भगवान से क्यों कहा छोड़ भी दे आकाश सिंहासन उसी चीज को छोड़ दे फिर कौन आता है आकाश आता है हाँ इस आकार में प्रवेश करते गिर गई पतित दुनिया है, पतित दुनिया में सब सब पतित है, ए टू जेड। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी ऐसी नहीं है जो पावन देवता बनी। तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। धरती मानी मिट्टी, देह अभिमानी की मिट्टी। तो बच्चे बुलाते थे, उन्होंने कारण क्या बताया? अभी बताए, क्योंकि माया का परछावा पड़ गया है, इसलिए बाप को भी नीचे बुलाते। हालांकि बाप कोई नीचे स्टेज में आता नहीं है, वो तो सदैव ऊंचा ही ऊंचा है। तो बाप है ही देते, तुम बेफिक्र रहो, क्या फिक्र मत करो इस बात की, इस बात की कि पता नहीं बाबा नीचे स्टेज में आएगा कि नहीं आएगा। बाबा नीचे शक्ति पर, साकार शक्ति पर साकार बनने आएगा या नहीं आएगा? बाबा हाथ से देते हैं, तुम बेफिक्र रहो, ये तो मेरा पार्टी है। जिसका इस साकार शक्ति पर आना और साकारी स्टेज में रह करके पाठ बजाना, यह तो मेरा पार्टी ही है। क्या पार्टी? मुर्मियों ने क्या बताया पार्टी? पतितों को पावन बने। पतित पावन कैसे बने? पावन के बताए कैसे पतित बने, याद तो बाद में किया जाता है, याद कब किया जाता है? जब किसी से कोई प्राप्ति हुई हो तो वो याद पड़ता है, और प्राप्ति भी नहीं हुई होगी, रसगुल्ला पहले खाया होगा तो याद पड़ेगा ना, और खाया ही नहीं होगा तो याद कहां से पड़ेगा। तो परमात्मा से जरूर सारी दुनिया को ऐसी कोई प्राप्ति हुई है जो और किसी से नहीं हुई, वो अनुभूति और किसी से नहीं हो सकती, इसलिए सब परमात्मा को याद करते हैं। तो ये तो मेरा पार्टी है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर के फिर से राजी हो, फिर पहले भी आया है और उससे पूर्ति नहीं हुई, इसलिए तो बाबा ने मुर्मियों बोला 50 साल हो गए और फिर भी जहाँ के तहाँ, जहाँ के तहाँ। तो इसका मतलब बच्चे अभी निराकारी स्टेज में उससे नहीं हो पाए, तो फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को पावन बनाओ। इस समय सभी नास्तिक आज न लायक निर्धन के हैं, आज हम उनको कहा जाता है जिनका माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपन की पहचान और सुनाना, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको आत्म कहा जाता है। और अगर बाबा के बच्चे जो बने हो वो भी आपस में लड़ते झगड़ते रहे हो तो
तो उनको क्या कहेंगे? जरूर उन्होंने बाप को अभी पहचाना नहीं है। अगर पहचान लें तो लड़न आ जाएगा, मतलब भूल जाए। बाप को पहचाना नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको आप सभी बड़े दुखी। अब जो अपन को गुरु कहलाते आते हैं, धर्म के बड़े बड़े हैं, वो आपस में राय कर रहे हैं कि भारत में शांति कैसे। सारी दुनिया में अशांति, तो धर्म के जो बड़े बड़े हैं वो भारत में ही राय निकालेंगे क्या? धर्म के जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, तो सिर्फ भारत में ही तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। यहाँ नीतियों का जरूर ब्राह्मणों की दुनिया की बात बाबा कर रहे हैं, उस दुनिया की बात नहीं कर रहे। पहले घर का सुधार थे, बाहर का सुधार, पर का सुधार। तो पहले आधार मूल्य और उससे भी पहले बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े गुरु हैं धर्म के, वो आपस में राय कर रहे हैं कि भारत में शांति कैसे। सारी दुनिया में अशांति, इसलिए बच्चों को दुख से रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य को धाम लेने के लिए बाप आते, ले जाने के लिए बाप आते। बाप कहते हैं कि मेरा वर्जिन है और कल्प कल्प आता हूँ, सारे वर्ल्ड अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद का बाबा, अभी ऊपर से सब छोड़ करके आए। क्या तख्त कौन सा है? एक तो स्वकाश का, स्थिर का और तीसरा तख्त कौन सा है? राजा ही का तख्त। लेकिन जो बाप से कोई राजा ही का तख्त, लेकिन फिर कौन सा तख्त रह गया उनको? आकाश तख्त। उनके पास दिल तख्त नहीं है क्या? दिल का तो नहीं है क्या? दिल का तो है, दिल कहाँ होता है? पापा शरीर में दिल होता है, पड़ो में कहते हैं दिल होता है। अवकाश तत्व कहाँ होता है? कहाँ होता है? दिल की कीमत दिल। तो बाप के पास कौन सा तत्व है? कौन सा नहीं है? अच्छा दिल तत्व है, दिल की अपनी बाबी के बस में है। जब बाप जाए तो तुम क्यों करते हो? तुम कहते हो तो बाप क्यों जाए? तुम भी जानते हो एक दिल ऐसा है जो पूरा पूरा बाप के बस में है। बाप को बाप का जिसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार है, ऐसा कोई है? कौन जाए? जो उनका साकार माध्यम है वो ही उनका दिल है, दिल तत्व तो दिमाग तत्व। साकार माध्यम कौन है? कौन से तौर को दिल तत्व कहा गया? दिल्ली मेरा दिल तत्व। क्या दिल्ली मेरा दिल तत्व? और जब दिल्ली मेरा दिल तत्व तो शांत भी आई नहीं मिला तत्व तो है। अच्छा
तो बात क्या, क्या दिल्ली जिस तत्व पर पूरा अधिकार है?
अंतिम सलाद मामा रहती
इसका भी कैसा लगा देते
अंतिम
तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये नाटक है सुख और दुख का
इस समय सभी नाचते
आज पर है
एक तो बाप को भी है और दूसरे के कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी अगर बाप को जाने तो वो तो सर्वव्यापी तो होता नहीं वो तो एक एक व्यापी अर्थात एक मुकर्र व्यापी आता है आज मेरी ऊंची रखने और अंत मेरी ऊंची रखने आप तारीख को संपन्न करता है बुलाते हुए है परम पिता परमात्मा तो बुलाया किसको जाएगा कौन गया किसी बुलाती हुई जो भी जीती ये जीत भी इस पर गाया हुआ क्या जो भी दे तो क्या भी हो गई
जो दुखी हो गए उन्हें क्या हो गई बात मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ उसको कोई सिर ला जा आए लेकिन आने के बाद बच्चों को इतनी सामर्थ्य नहीं कि 50 साल ही पुरुषार्थ करने के बाद किसी स्टेज पर पहुंच पाते फिर जहाँ के साथ पहुंचे इसलिए तो मुझे बोला तो 50 साल के बाद भी जहाँ के साथ पहुंच गए जहाँ के वहीं पहुंचे तो इसलिए बोला फिर से आओ फिर से आओ कौन कहेगा बच्चे ही कहेंगे ना इनकी बुद्धि में बात बैठी हुई हो फिर से आओ का मतलब 5000 वर्ष पहले आए थे अब फिर से आओ ये थोड़े तू तो हर 5000 वर्ष आते ही आते हैं तो बच्चे बाप को भूले हैं गीता का भगवान जिसने राजयोग सिखाया क्या सिखाया राजयोग सिखाया राजयोग नाम क्यों रखा योग से राजा ही मिलती है बाकी कोई राज नहीं है कोई राजों से भरा योग है योग तो सभी लगाते पति पत्नी से बच्चा बाप से भाई भाई से बहन भाई से योग तो सबका होता है लेकिन उनमें इतना राज नहीं है जो बाप योग सिखाते हैं उसमें क्या विशेषता है वो तो राजा ही तो बात नहीं है बस यह भी क्या विशेषता है और ये योग लगाते हैं वो एक संबंध का रचना आती है और बाप से जो बच्चे योग लगाते हैं तो जो पक्के योगी होते हैं उनको सर्व संबंध की रचना आती है रचना आती है अनुभूति आती है तो राजयोग सिखाया अनाथ को तनाथ बनाया माता पिता का भी संबंध आ जाता है। जिनके माता पिता नहीं होते हैं वो क्या समझते हैं अपने को? अना यतीम आर्पण, फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आर्पण होंगे तो मन से वाचा से कर्मणा से झगड़ेंगे। तो जिन्होंने अनाथ से तनाथ बनाया उनको जानते थे, जाते थे हम लोग ये अनाथों को तनाथ बनाने वाले बाबा। अनाथ से तनाथ भारत को ही बनाते, विदेश को विदेश को नहीं बनाते। भारतीय समाज सदा सुखी था, प्योरिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, गृहस्थाश्रम था। दूसरे देशों में स्त्रियों गृहस्थाश्रम नहीं होता है, क्योंकि वहां तो तलाक प्रथा चलती, एक छोड़ा दूसरा किया तो गृहस्थी जीवन तो टूट गया। भारत महान पवित्र था, प्योरिटी बहुत थी, गाते भी हैं सोलह कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ तो तुम अनाथ बन गए। अनाथ बनने से इनमें से कोई गुण कोई क्वालिटी नहीं है, उनको पता नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वह समझते हैं गौ आदि को मारना की कोई हिंसा है। कौन दुनिया वाले समझते हैं, ब्राह्मण भी दुनिया में तो नहीं समझते हैं। ब्राह्मण दुनिया में कौन गौ मारता है? हाँ, कन्या माता जो है वो ही भारतवर्ष में गौ की माँ से तो मानी जाती है। गौ जो होती है भारत की कन्या, जिस अपने से जो बांध दी जाए वही वही बनी रहती है। वो समझते हैं गौ आदि को मारना ही कहीं कन्या नहीं आता, ब्राह्मण जी ने कन्या को मारता है क्या? माताओं को कोई मारता है क्या? हत्या करता है क्या? समझ लेते और यह है विचार की हिंसा। विचार करना है जैसे एक की बुद्धि को जो परमात्मा में लगनी चाहिए वो पास ही सही है अपन कर सकते। वो आत्मा का घात कर दिया, तो उन लोग को पता नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। बात कहते हैं एक तो पर काम का चाले चलाना ही बड़ी है। रावण की प्रवेशता इसके कारण सभी कटिल बन गए, पति क्यों बन पड़े इन सभी। रावण ने प्रवेश कर लिया, रावण मनु व्यभिचारी, व्यभिचारी बनाने वाले प्रवेश कर लिया है, प्रवेश कर लिया है। रावण काय में प्रवेश करता है, अरे बुद्धि में ही प्रवेश करेगा ना,
मुझे भूलिए। विचार बस इसे पतित बन पड़े पाप कहते ईश्वर सर्वव्यापी सभी ईश्वर के रूप है। देखो मुझे पावन होनी चाहिए। ये तो आत्म संप्रदाय है जो कहते हैं सभी ईश्वर के रूप है। सभी जब पांच विकार की प्रवेशता है इसलिए कहते हैं कि सभी ईश्वर के रूप है। नहीं तो ईश्वर का रूप तो वास्तव में एक ही होगा। नंबर वन दुश्मन है देह विमान फिर काम क्रोध। ये पांच विकार वाले दुश्मन है जिन्होंने तुमको अनाथ बनाया। तुमको ये भी पता नहीं है कि रावण राशि कब हुआ कैसे भी यह राक्षस राशि है। क्या नाम रखा राक्षस राशि इसको रावण कहा जाता है। परंतु जानते नहीं है रावण को बाप जीते हैं भारतवासी बच्चे तुम सत्युग में सजा सकते कितने सुखी थे। वो शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गए। उनका आवत भी कहा थी यादगार संबंधित की यादगार कहते जो यहाँ से अनुमान छोड़ करके पाप से मिलेगा तो वो स्वर्ग की सुख की अनुभूति कर सकता है। और जरा भी अगर से अनुमान हुआ तो पाप से मिलने के बाद सुख की सुखी अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए बाबा मंदिर में पूछते हैं बार बार तुमको पाप मिला तो है नहीं गौर अगर मिला तो है विजन होनी चाहिए फिर हम दुखी क्यों है। अनुमान को नहीं किया हम ये हैं हम वो हैं हम ऐसा कर देंगे हम वैसा कर देंगे हमने इतना किया हमने उतना किया। तो शरीर छोड़ते हैं कहते हैं स्वर्ग गया तो नरक से गया ना। शरीर छोड़ेगा तो अंजाम क्या होगा। दुख की दुनिया से जाएगा ना तो देह में आके क्या हुआ है। तो देह अभिमान से अगर मरेगा तो दुख की दुनिया से अनुभूति नहीं हो सकती। वो सुख की ही अनुभूति करेगा। किसी भी प्रकार का संकल्प मात्र भी ऐसा नहीं आ सकता जिसके सुख उत्पन्न हो। तो समझ चाहिए भारत इस समय नरक है। नरक बताओ इसको रौनक नरक कहा जाता है। साधारण नरक नहीं रौनक नरक। यदि नारी होती है ना उसमें कीड़े क्रोध आते हैं एक दूसरे को बांधते रहते गर्व पुराण में कथा है रौनक नरक। नाम रख दिए क्या गर्व क्या खाकर गर्व आप बिच्छू चिंदन ये सब खाए लेते हैं पुराण। और कोई नदी नहीं है जिसे सागर में कभी गोटे खाते रहते हैं एक तो पाप से दुखी होती रहती है, पाप आकर समझाते हैं ये सुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि ये अभी अभी नरक है और अभी अभी स्वर्ग है। इसी दुनिया में यहाँ कोई स्वर्ग है और अभी अभी नरक है ऐसा कुछ नहीं। जैसे समझते हैं तू सुख देता है तू दुख देता है, इसका मतलब परमात्मा अभी स्वर्ग भी दे रहा है अभी अभी नरक भी दे रहा है, ऐसा नहीं। इसके पास बहुत समय है समझते वो स्वर्ग में, परंतु ऐसे नहीं क्या ऐसे ही नहीं समझ रहे ना। चाहे हत्या साधन हो चाहे देह हत्या साधन में ज्ञान धन हो क्या, देह का ज्ञान धन भी अगर किसी के पास है तो ऐसे न समझे कि हम स्वर्ग में, वो तो साधन है, धन भी साधन है सुख भोगने का और ज्ञान धन भी साधन है उनकी पद पाने का, सदा सुखी रहने का साध भी नहीं है। भगवान भी सुखी होते हैं क्या, रावण जैसे ज्ञान ज्ञान भी बहुत सुखी होते हैं। रामायण की टीवी में रावण का चेहरा देखा बहुत बनता है लेकिन दुखी दुखी हो धन नाम के दुखी होते हैं, ऐसे में सारे दुनिया दुखी कम कोई जाते बात समझाते हैं तो नाच से तुम्हारा तो धनी है मान के साथ तुम आपको तो लक्ष्मीनारायण के आगे भी जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हमारे देश में, राधे कृष्ण के आगे भी जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक देश में। बाप समझाते हैं तुम्हारे जो लौकिक माता पिता भाई बहना गुरु गोसाई आदि है जो भी है सभी निर्धन की आत्मा है, वो तुमको सुख नहीं दे सकते। आसन है तो जरूर राय
गलत देश के अंत और दूसरे देश के आज की थोड़ी वर्णित हो गई
होगा आज अब अपने पैरों खड़ा हो गया, फाइव ईयर प्लान पूरा हो गया क्या है? भारत के घर के नीचे गीता रखी हुई, उस गीता में क्या लिखा है? फाइव ईयर प्लान तिहत्तर सतहत्तर से लेकर के अस्सी इक्यासी तक का फाइव ईयर प्लान। वो प्लान तो बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं सरकार के बार बार, और प्लानिंग कभी पूरी होती नहीं। राम राज्य आसन तो रामराज जी तो भले यहाँ नहीं आता है लेकिन प्रिंस प्रिंस तो बन ही जाता, बैगर टू प्रिंस बन जाता। तो अभी ही देखो इतने मनुष्य जो रहने के लायक जगह नहीं है, अभी भी क्या है हालत। भारत के पास तीन पैर पृथ्वी तो हो भले लेकिन है? तीन पैर पृथ्वी नहीं है, अभी भी तीन पैर पृथ्वी नहीं है। कैसी जगह, और चलो तीन पैर पृथ्वी भी हो तो जगह कैसी है रहने लायक नहीं। आगे पीछे चारों ओर बदबू ही बदबू, तो जगह रहने लायक हुई है? स्थूल बदबू भी उड़ रही है तो सूक्ष्म बदबू भी उड़ रही है। नाम ही आबुरु। नाम क्या है? माउंट आबू। जहाँ बदबू का पहाड़ आगे इकट्ठा होता है, प्रतीतात्माओं को ही पावन होना है तो कैसे इकट्ठे होंगे? हैं? प्रति भी इकट्ठे होंगे। तो खाने के लिए भारत को अन्न अन्न नहीं है, योग माने स्नेह रूपी अन्न नहीं मिल रहा है उसको। योग माने क्या? इसने सच्चा प्यार वही आत्मा की प्यार है। तो खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है। इस महे दिन से गए दुर्गे से उजाए निरंतर व्यावस्था आई है कि चोरी या छठी अवस्था को ना है। खाने के लिए अन्न अन्न नहीं तो छोड़ भी दे आकाश सिंह इस धरती पर आज कौन गाते हैं? बस लोगा भीख मांग रहे हैं कौन? बस तो ये खेल भारत भर ही बना हुआ है, है? तो सारी दुनिया भक्त है तो प्रजापिता क्या हुआ? सारी दुनिया पतित है तो प्रजापिता क्या हुआ? पतित बस ये तुम्हारा बाप आया हुआ। बाप का मतलब क्या? ऐसी कोई बात नहीं जो तुम पर लागू न होती। तो सारी दुनिया का बीज है तो सारी दुनिया की सब बातें पहले किसके ऊपर लागू होंगी? पहले बाप के ऊपर लागू होंगी। पहले की कहीं गया पहले किसके ऊपर आएंगे? बाप के ऊपर आएंगे। तो भीख मांग रहे ये खेल भारत पर ही बना हुआ है। भारत अनाथ था और भारत अनाथ है। भारत सॉल्वेंट पवित्र था, भारत इस वाले सॉल्वेंट अपवित्र। भारत में राजाओं का राजा डबल सिरताज बनती है। कैसे सिरताज? डबल। कौन कौन से डबल? लाइट का ताज और राजा ही का ताज। लाइट का ताज, लाइट का ताज कौन सा होता है? प्योरिटी का ताज। और अभी न प्योरिटी का ताज है और न पांडवों को राजा ही का ताज। पहले थे बाप कहते हैं अब पतित राजाओं का भी राजा तुमको बनाता हूँ। क्या कहा? ये अभी की बात है। हाँ ये नया पॉइंट है, नया तो नहीं है। भगवत वाणी में कहा है एक ही जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बनता है। 21 जन्मों में जैसी जैसी प्राप्ति करेंगे उसी आधार पर 63 जन्मों की भी हिसाब की नदी हुई है। पॉइंट तो नया नहीं है लेकिन भूल जाते हैं तो नया। तो बाप कहते हैं अब पतित राजाओं का भी राजा तुमको बना दो। शूटिंग हो रही है तो शूटिंग पीरियड में डायरेक्टर भी है, एक्टर शूटिंग भी कर रहे हैं, रिहर्सल भी कर रहे हैं और उसमें द्वापर की भी शूटिंग और कलयुग की भी शूटिंग होती है, सत्य को त्रेता की भी शूटिंग होती है। तो जब गिरती कला की शूटिंग होती है तो उस समय जब जब बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरती कला की शूटिंग माना कहाँ के राजा बनेंगे? वहां पर कलयुग के राजा बने। डबल सिर ताज नहीं होते, सिर्फ सिंगल ताजधारी राजा बनते हैं। कौन सा सिंगल ताज? वहां तो राजा ही का ताज होगा फुल ताज, और यहाँ कौन सा होगा? शूटिंग पीरियड में कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। जो यहाँ जितनी जिम्मेवारी उठाते भले अपवित्र रहते हैं, पवित्र तो कोई नहीं है, नंबर वार तो सब हैं, क्योंकि विकारी भी सतो प्रधान सतो सामान्य और रजो और तमो होते हैं, एक जैसे विकारी नहीं होते, लेकिन नंबर वार तो होते ही हैं। तो जो जितनी जिम्मेवारी यज्ञ की उठाते हैं उतने बड़े राजा बनते हैं। कोई सम्राट बन जाते हैं, कोई छोटे मोटे राजा बनते हैं। तो है इस समय जिम्मेवारी उठाने के ऊपर, है दे नहीं कि जग में सरेंडर हो गए, कुर्सी तो मिल गई, लेकिन जिम्मेवारी नहीं उठाए, बल जरे बरी जाओ हम परिवार। तो डबल सत्ता से राजाओं का राजा तुमको अभी बनाता हूँ, क्या द्वापर में भी महाराजा होते हैं, पतित राजा है, डबल सत्ता से राजाओं को पूजते, क्या पतित राजाओं की निशानी क्या है? जो डबल सिर ताज राजा हैं, यानी जिनको लाइट का भी ताज और जिम्मेवारी का भी ताज होता है। लाइट मतलब कौन सी लाइट? प्योरिटी, ज्ञान की लाइट, कोई स्थूल लाइट तो होती नहीं है जो देवताओं को दिखाई जाती। जितनी जितनी प्योरिटी होगी उतनी मनसा में मन चिंतन मंथन चलेगा, प्योरिटी नहीं होगी तो मनसा मन चिंतन मंथन चल न सके, बाप की याद आ न सके। तो बताए पतित राजाएं डबल सिर ताज राजाओं की पूजा करते, ये भी कहां की बात? ये भी संगमयुग में शूटिंग होती है कि जो पतित राजाएं होते हैं जिम्मेवारी तो उठाते हैं, लेकिन होते कैसे हैं पतित? हाँ, उनको फिर कहाँ जाकर के किसके पास जाकर के किसके स्थान पर जाकर के माथा झुकाना पड़ता है? डबल सिर ताज राजा के पास जाकर के उनको माथा झुकाना जरूर पड़ता है। ये भी शूटिंग यही हो रही है, क्योंकि वो पावन है और वो पति। बात पर ये खेत है, बाकी वो तो पाइप लाते हैं दूसरे धर्म वाले। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर वन धर्म है, देवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ, वहां भ्रष्ट कोई होते नहीं। भारत में ही देवी देवता धर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म से अब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बने, धारणाएं भी भ्रष्ट और कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो भी भ्रष्ट बन गए। पाप समझाते मुख्य धर्म ही चार है, कौन कौन से? हाँ, देवता धर्म बोलते कितने? कभी से पहले सचिव का देवी देवता धर्म, सचिव की स्थापना का कर्ता भी तो बाप ही करेंगे, ऐसे तो नहीं कि बाप आकर के दो कला कम 14 कला वाले धर्म की स्थापना आकर के कर देंगे। बच्चों की स्थापना बाप ही याद रखे, बाप कोई त्रेता की स्थापना आकर के नहीं करते, द्वापर की स्थापना आकर के नहीं करते, वह है हेवनली गॉड फादर, यानी पहले जन्म का जो स्वर्ग है उसकी रचना करने वाला हेवनली गॉड फादर। बाप कहते मैं कल्प के एक ही संगम में भी आता हूँ, तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं, सनाथों को सनाथ बनाने वाला बेहद का बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को तो अल्पकाल का सुखी दे सकते हैं, सदा काल का सुख 84 जन्मों का दे नहीं सकते, जन्म जन्मांतर की जायदाद कोई दे नहीं सकता। ये है ही सुख की दुनिया, त्राहे त्राहे करते रहते हैं, भारत सुख धाम था अभी दुख धाम है, बाप आए हैं शांति धाम से, कहां से आए हैं शांति धाम से, कौन से बाप हैं? शिव बाप माने ज्योति बिंदु शिव ही शांति धाम से आए हैं, बाकी बेहद का बाप प्रजापिता नहीं हैं? वो शांति धाम से नहीं आए हैं? वो यही का है, योग की रिजल्ट क्या है, जो सबसे जाती योगी होगा तो प्राप्ति क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा सुख और शांति। तो तुम बच्चों को और धर्मों के मुकाबले जाति शांति और सुख मिलता है, और धर्मों को इतना सुख और शांति, तुम्हारा 3/4 हिस्सा क्या है, सुख और शांति, द्वापर युग में लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं कोई इतने ज्यादा। तो ये तो ऑप्शन बताया क्या 3/4 60-65 जन्म 84 जन्मों में से 3/4 कितने हुए, कितने हुए अरे जल्दी निकालो, गणिता की भैया तिरेसठ जन्म, तो 21 जन्म वो और बाकी 63 जन्मों में से निकाल लो 42 जन्म, यानी द्वापर द्वापर सब तो सुख में ही रहते, यानी 3 युग सुख में, लेकिन ये अवसर बताया है, ऐसे नहीं समझना सबका एक ही है, उन्होंने भी कोई जाति योगी है कोई कम योगी है, तो जो जाति योगी होंगे वो सुख भी शांति भी जाति होगी। तो मैं कब आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म, तो जरूर कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जिनको 1-2 जन्म ही सिर्फ दुख मिलता है, बाकी सब जन्मों में सुख का प्रारब्ध शांति का प्रारब्ध रहता है। तो बाप शांति देश से आए, इसका मतलब है कि प्रजापिता वाली आत्मा का भी कोई सुख कम नहीं है, संगम में आती है तो कहां से आती है, शांत देश से। जो व्यास वाली आत्मा है मान लो फर्स्ट व्यास, सेकंड थर्ड नहीं, तो इतनी ज्ञानी तू आत्मा होगी तो वो अशांत रहेगी क्या? अशांत रह करके क्या शास्त्रों का निर्माण हो सकता है क्या? बुद्धि चल सकती है क्या? चलिए मनन चिंतन मंथन चल ही नहीं सकती। देह और देह की दुनिया में ही रमण करती रहेगी बुद्धि। अभी सुखधाम है, आए हैं शांति धाम से। बाप कहते हैं अब लाइट हाउस बनो। कौन से हाउस बनो? लाइट हाउस। तो क्या आंखों में से लाल लाल लाइट निकलने लगेगी? ट्वेल्थी की लाइट निकलने लगेगी, कैसे पता चलेगा? हाँ, जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, उनकी आंखों से क्या निकलता है? चित्र देखा है ना, क्या निकल रहा है? प्योरिटी की लाइट निकल रही है ना, तो जितनी लाइट निकल रही है उतना ही उनके मुख से ज्ञान भी, अपनी स्टेट का, कास्ट की स्टेट का ज्ञान भी निकलता है। सच्चाई भी उनके मुख से निकलती है। पहले वो सच्चाई सच्चाई होती है, बाद में उनके फॉलोअर्स द्वारा उसको झूठा बना दिया जाता। तो बच्चे लाइट हाउस बनो। क्या बनो? पवित्र बनेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी? एक तो चेहरे से ही महसूस होगी, और दूसरा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी, और मंथन बहुत चलेगा। वही वो चेहरा भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन मुख से ज्ञान रतन, बुद्धि में मनन चिंतन मंथन भरा हुआ हो। अगर बुद्धि नहीं चलती है विचार सागर मंथन, तो समझो अभी चढ़ती कला की ओर नहीं। तो बच्चे लाइट हाउस बनो। कौन बने लाइट हाउस? बच्चे, बच्चों में पहला बच्चा कौन? बच्चों में पहला बच्चा कौन? उसमें तो जो बाबा है होता ही, वो तो तीसरा ही नेत्र है, वो क्या बने? उसमें तो बनने न बनने की बात ही नहीं। पहला बच्चा कौन? ब्रह्मा। तो पहले तो बुद्धि किसकी चले? बड़ी अम्मा ब्रह्मा की बुद्धि चले। ब्रह्मा तो वैसे ही गोरे चिट्टे ऐसे हैं, और उनकी बुद्धि चल पड़ेगी तो पता नहीं, एकदम लाइट आउट हो जाएंगे। हाँ, कुछ पड़े वो। अच्छा, तो शिवभाव को तो मैं सब भूल जाएंगे। सबको हाथ गौ मुख में चलो जाए फिर का ऐसो कहेगा अब ना हुए। अब गीता को भगवान कृष्ण ना बने वो ना, अच्छी बात देखेंगे। बात फिर भी अंत में आ ही होंगे। क्या कहा? आखिरी फाइनल परीक्षा में कितने पास होंगे? पास फिर भी आ ही होंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे लाइट हाउस बनो। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम के तारे। अब नाटक पूरा होना है। ये चोला पुराना हो गया है। ग्रस्त में रहते पवित्र रहना है क्या? तो संकल्प आवर्तन छोड़कर गाज जाए।
कैसे पवित्र रहना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, पवित्र है भी नहीं स्थापन करने की थी, ज्योरिटी थी, अब ज्योरिटी कहाँ आया हुआ हूँ? इंप्योरिटी की दुनिया। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, क्या कहता हूँ? पवित्र है भी नहीं स्थापन करने आया हुआ हूँ, तो तुम्हें संशय आओ तो क्या है? तो तुम्हें संशय आता हो कि जो हमारो बाप हूँ? ये हमारे बाप जो ऐसा स्वर्ग स्थापन हो जा तरीका से अब लाखों वर्ष छोटा मोटा गुरु नहीं है, ये बहुत बड़ा धर्म गुरु है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ है भी स्थापन करने। प्योरिटी थी अब इम्प्योरिटी है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। इस समय तुम ईश्वरीय गोद में। क्या इस समय तुम काय की गोद में हो, किन की गोद में हो? ईश्वर की गोद में हो। और पहले पहले आखिरी गोद में इस समय ईश्वरीय गोद में हो। तो गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। ऐसे न हो कि आखिरी गोद याद आती हो, आखिरी गोद में नहीं चले जाना। ये ईश्वरीय फैमिली है तो फैमिली होगी तो बाप भी होगा, तो अम्मा भी होगी, तो बच्चे भी होंगे। दादा है जो बाबा, क्या बाप और दादे, बाप दादा अलग बात और बाप दादे अलग बात। दादे कहा जाता है बाप के बाप को, ग्रैंड फादर। दादा है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा है, और लौकिक बाप भी है। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा और क्या है? लौकिक बाप भी है। इस समय तुमको तीन बाप है। कौन कौन से तीन बाप? लौकिक कौन? लौकिक कौन? प्रजापिता ब्रह्मा वेद का बाप, और लौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा है बस, और कोई नहीं है। और कोई नहीं है? और कोई नहीं? बालक राम को तो याद है। हाँ, और कौन सा बाप है? देह को पैदा किया तो बताए रहे, पूर्व जन्म की बात बताए रहे। ज्ञानी तू आत्मा है, पूर्व जन्म याद है, तो बताए रहे। उस समय तुमको तीन बाप है, तीन बाप बताओ। ब्रह्मा लौकिक बाप है, प्रजापिता इंद्रजी को होता है कि वो अलौकिक होता है? ब्रह्मा है अलौकिक बाप, और प्रजापिता लौकिक बाप, और
जो परमात्मा जो बिंदु पारलौकिक बाप या चार बाप लौकिक अलौकिक परम पिता परमात्मा न लौकिक पारलौकिक परम पिता परमात्मा ये है रियलिटी ज्यादा ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है मनुष्य तन में आए हैं बाप है आत्माओं से बात करते हैं जैसा देह अभिमानियों से बात नहीं करते बात किससे करते हैं आत्मिक स्थिति में रहने वालों से बात करते हैं। देह अभिमानी की स्थिति में रहने वालों से बात नहीं प्रजा पिता तो करता होगा प्रजा पिता तो देहधारी है इसी दुनिया का है वो तो करता होगा। शिव बाबा बात शिव बाबा बात यानी सुप्रीम सोल नहीं बात करता रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं और देहधारी बाप देहधारी बाप देहधारी बच्चों से बात करेगा। एक कब्जा है पूरा है कब्जा घरे ले जा उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है किनको रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है जो रूहों से बात करते रूह को इंजेक्शन लगाते तो समझो देह को इंजेक्शन लगाते रूहानी बाप किसको इंजेक्शन लगाते रूह को इंजेक्शन लगाते और जिस्मानी बाप जिस्म को इंजेक्शन लगाते यहाँ बाप की तो बात ही नहीं आ तो सर्जन की बात है जिस्मानी सर्जन और रूहानी सर्जन वो देह को इंजेक्शन लगाते और वो रूह को इंजेक्शन लगाते ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं अरे आत्मा निर्लेप कहते होगी कि हमारी आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता क्या शरीर को लेप छेप लगता है पाप पुण्य क्या शरीर के साथ जाता है तो पाप पुण्य का जो लेप छेप है वो तो आत्माओं के साथ जाता है आत्मा जाके दूसरी जगह जन्म लेती है उसके अनुसार वो कहते हैं शरीर हमारी आत्मा निर्लेप है शरीर को लेप छेप लगता है इसलिए शरीर को गंगा स्नान कराने ले जाते ब्राह्मण को दुनिया में कैसा कि हमारी आत्मा निर्लेप है तो दुनिया भी धर्मगुरु कैसे बताओ जो यहाँ से वो वहां बन करके बैठते हैं वो समझते हैं कि हमारी आत्मा तो निर्लेप हो गई हम तो आत्मा तो परमात्मा हो गए हम तो कुछ भी करें हम को लेप लगने वाला नहीं ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं अरे आत्मा कैसे निर्लेप होगी परमात्मा तो निर्लेप हो सकता है, ऐसा पाठ बजा सकता है कि उसको संग का रंग निक्षेप न लगे, लेकिन आत्मा कोई भी निर्लेप नहीं है। आत्मा में तो संस्कार जिस संस्कार फिर जन्म मिलता है, ये गुरु गुसाई तो पाप से ही मुक्त कर देते आत्मा निर्लेप कह के, कैसे भी वो करते हैं ये बताए देते हैं दूसरों को, हमारी आत्मा निर्लेप है, तुम हमारा संग करो, हमारे ऊपर तो कोई पाप छाप चढ़ेगा नहीं, समझे, बल्कि हमारा संग तुमको लग जाएगा, तुम पतित से पावन बन जाओगे। सन्यासी लोग क्या कहते हैं, गंगा में स्नान करने से सब गंगा को पतित बनाई देते हैं, और हम उसमें पांव डालते हैं बुजुर्ग की पांव तो गंगा क्या बन जाती है, पांव, तो वो कौन हो गए, वो हम हमें क्यों बाबा। तो ब्राह्मणों की संग में जो दुनिया में कोई अपनी आत्मा को निर्लेप तो नहीं कहता है ना, कहता है, नहीं कहता,